जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल हम सुन रहे थे चैतन्य चरितामृत से, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना होगा आपने, तो उनका जो लाइफ है, उनका जो चरित्र है, तो चैतन्य चरितामृत में कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए थे जगन्नाथपुरी में, और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग भक्तों से मिलाते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी के कई सारे भक्तों को मिलाया। हर एक भक्त की जो यूनिक यूनिक जो क्वालिटी है, उनके गुण है, उनका परिचय सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कराया। कहा कि ये अलग अलग ये दास हैं, ये भवानंद राय हैं, अलग अलग भक्तों के नाम और उनके गुणों के बारे में, उनकी सेवा के बारे में बोला कि ये जगन्नाथ की कौन कौन सी सेवा करते हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त की जो पहचान है वो सेवा से होती है। इस भौतिक जगत में भी आप किससे मिलते हो तो उसको पूछते हो आप क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका। तो वैसे ये जगत में भक्त की पहचान भी कैसे होती, सेवा से होती है कि क्या भगवान की क्या सेवा करते हो। हाँ, मैं भगवान के लिए माला बनाता हूँ, भगवान के लिए मैं भोगा बनाता हूँ, भगवान का प्रचार करता हूँ। हाँ, कई प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं। तो इसलिए भक्तों को भगवत सेवा उसके पास हमेशा होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इस जगत में आनंद की अनुभूति किसी व्यक्ति को होती है तो वो सेवा से ही होती है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति देश का सेवा करके आनंद अनुभूति करता है, रे सब त्याग करके देश की सेवा कर रहा है। कोई व्यक्ति अपने परिवार की दिन रात सेवा करता है, क्यों? क्योंकि उससे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का सुख, एक विशेष प्रकार का आनंद, एक विशेष प्रकार का रस उसे मिलता है। और वही एक्टिव प्रिंसिपल है, यदि उसको रस नहीं मिलेगा, उसमें आनंद नहीं मिलेगा, तो फिर वो कार्य नहीं करेगा, दिन रात क्यों मेहनत करेगा व्यक्ति। इसलिए क्योंकि उसमें कुछ एक विशेष प्रकार का भौतिक आनंद सुखा है, आनंद है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, दिव्य नहीं है, टेम्पररी है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य अलग अलग भक्तों से मिला रहे हैं और उनकी सेवाओं के बारे में भी बता रहे हैं कि ये कौन सी सेवा में एक्सपर्ट है। तो इसलिए भक्तों को भगवान की सेवा में हमेशा रत होना चाहिए। हाँ, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग नहीं होना चाहिए, भगवान से संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ सेवाएं हमारे पास होनी चाहिए। बल्कि मैं अभी जा रहा था उस दिन उज्जैन लास्ट वीक, तो एक कोई एक दो बिजनेसमैन हमारे उसी में बोगी में थे। हाँ, तो कहते आप लोग करते क्या है, खाली रहते पूरे दिन। हमने कहा हमारे भक्तों के पास जितना कार्य है ना, आपके पास उतना काम नहीं होगा, ओवरलोडेड रहते सेवाओं से, 24 आवर्स भी हमारे लिए कम लगते हैं, इतने सारे कार्य हैं, इतना सारे शास्त्र है, इतने सारे लोगों से मिलना है, इतने सारे एक्टिविटीज करनी है। बल्कि भौतिकवादी लोग सोचते हैं कि ये लोग अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। ये जनरली किसी साधु को कोई व्यक्ति देखता है गैरवे वस्त्र में, तो उसको लगता है कि ये तो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, लेकिन भागने में असली काम कर रहा है। वो लोग भगवत सेवा से भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों को लगता है कि जो भगवान से संबंधित कोई कार्य नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने कितने कार्य हमें दिए पूरे वर्ल्ड में, इतने सारे टेम्पल्स और इतने सारे एक्टिविटीज हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर सारे भक्तों से मिले वहां जगन्नाथपुरी में, फिर सारे भक्तों ने उनको प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक एक भक्त का आलिंगन किया, उनकी सेवा को स्वीकार किया, और सारे भक्त उनके स्थान से, उनके जो प्लेस निवास स्थान था वहां से चले गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु, अभी एक भक्त था उसके बारे में बताना चाह रहे थे, कंप्लेंट करने जा रहे थे, सबको बताना चाह रहे थे। क्या? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी अभी साउथ इंडिया का भ्रमण करके आए थे, 2 साल दक्षिण भारत वो गए थे, 2 साल उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। तो ऐसे 2 साल की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ एक उनका सेवक गया था, बल्कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेले भ्रमण करूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप अकेले यदि भ्रमण करते रहोगे तो फिर आपका जो कमंडलू है, हाँ, वो आप हमेशा नाम का जप करते रहते हो, नाचते रहते हो, गाते रहते हो, फिर आप आपके लिए ना कहाँ प्रसाद की कहाँ कौन व्यवस्था करेगा, आपके कपड़े कौन देखेगा, फिर आपका कमंडलू पाने का कौन रखेगा। तो ये सब के कारण उन्होंने कहा एक तो सेवक को ले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, किसको भेजें? तो सब भक्त, अभी चैतन्य महाप्रभु जा रहे तो सबको लगता है ना मैं जाऊं उनके साथ, हम भी यहाँ भी देखते कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जा रहा है, सबको लगता है कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। जैसे कोई गुरु आते हैं या कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, हम उनके आसपास रहना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं। तो फिर कहा कि एक भक्त है, एक ब्रह्मचारी है, उसको ले जाओ, कृष्णदास, कृष्णदास उनका नाम था। तो महाप्रभु ने कहा आप सब लोग बोल रहे हो ना, आप सबने सम्मति दी है, तो मैं उनको ले जाता हूं अपने साथ। तो ये जो भट्टाचार्य था, कृष्णदास थे, उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको भेजा और फिर उन्होंने सारों भट्टाचार्य को कहा, भट्टाचार्य सब लोके विदायक कराइला, तबे प्रभु काला कृष्णदास से बोलाइला। हाँ, तो उसका नाम कृष्णदास या काला कृष्णदास है। सब भक्त गए, फिर उनको बुलाया। तो महाप्रभु इससे ये भी दिखाते हैं, किसी की प्रशंसा करनी है तो सबके सामने करो, किसी को डांट लगानी है तो एकांत में डांटो। हाँ, ये प्रिंसिपल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अभी उनको डांटना था, उन्होंने एक गलत कार्य किया था जिसके लिए उनको डांट लगानी थी। तो महाप्रभु ने सब भक्तों को भेजा, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किसी को डांटते तो सबके सामने दिखाना चाहते कि मैं कौन हूं, आई एम द बॉस, हमें पावर है, मेरे पास बल है। हाँ, लेकिन वास्तव में जब किसी की प्रशंसा सबके सामने करते हो, हाँ, तो वो व्यक्ति बहुत और अनुकूल हो जाता है सर्विस से साधे में, और एकांत में उसको डांटना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया काला कृष्णदास को, प्रभु कहे भट्टाचार्य सुन यहाँ चरित, दक्षिण गया छिल यहाँ आमार सहित। उन्होंने कहा हे भट्टाचार्य, देखो ये है कृष्णदास, ये मेरे साथ ना दक्षिण भारत की यात्रा में टूर में गया था, इसके बारे में जरा सुनो, इसके चरित्र के बारे में सुनो, इसने टूर के बीच बीच में क्या क्या प्रॉब्लम खड़ा किया था इसने मेरे लिए। भट्टा थारी काछे गेला आमारे छाड़िया, भट्टा थारी आए थे यहाँ रे आनिलो उद्धारिया। उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ भेजा था, लेकिन ये मेरी सेवा को छोड़कर भी चला गया। किसके साथ? केरला में। चैतन्य महाप्रभु जब केरला में गए तो वहां एक आदिवासी जमाते भट्टा थारी। तो ये भट्टा थारी लोग क्या होते हैं, वो धनवान व्यक्तियों के या लोगों के जो स्त्रियां हैं, ये एक साधु लोग होते हैं, एक प्रकार की जात होती है भट्टा थारी। ये दूसरों की स्त्रियों को आकृष्ट कर लेते हैं और अपना कैंप बढ़ाते हैं, फिर उनसे विवाह भी कर लेंगे, उनसे बच्चे पैदा कर लेंगे और अपनी टीम बढ़ा देंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। तो ये महाप्रभु चैतन्य जो साक्षात कृष्ण है, उनके साथ काला कृष्णदास गए और उन्होंने इनको भी आकृष्ट कर लिया। क्योंकि कैसे आकर्षित करते वो लोग, श्री धन देखाइया, स्त्रियों को दिखाकर वो पुरुषों को आकर्षित करते और अपने टीम में इकट्ठा कर लेते और अपना टीम बढ़ाते जाते हैं, अपनी जाति को बढ़ाते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, उनके साथ सेवा करने वाला काला कृष्णदास भी भट्टा थारी के जो श्रेया आदि है उनको देखकर भ्रमित हो गया, उनको देखकर भी आकर्षित हो गया और वो महाप्रभु भगवान को छोड़कर भी चला गया। प्रभुपद अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि व्यक्ति इवन भगवान की सेवा भी क्यों ना कर रहा है या गुरु की सेवा क्यों ना कर रहा है, वो भी माया से प्रभावित हो सकता है यदि वो अपने भगवत भजन में गंभीर नहीं है तो। हाँ, क्योंकि भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, या तो मेरी सेवा करो या माया का उपभोग करो, माया की सेवा में जाओ, तो ये स्वतंत्रता के कारण उन्होंने किसको छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिया और चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब बता रहे थे कि मुझे छोड़ के चला गया। महाप्रभु सुबह देखने लगे, अरे कहा गया मेरा असिस्टेंट, तो देखा कि वो तो दूसरे टीम में चला गया, मुझे अकेले छोड़ के चैतन्य महाप्रभु गए वहां। भट्टाधारी वो सारे जो लोग थे आदिवासी, उनके हाथ में तलवार और कुछ कुछ ना शस्त्र अस्त्र थे, उनको लेकर वो चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए दौड़ पड़े, तो वही शस्त्र अस्त्र अचानक गिर के उन्हीं लोगों के शरीर में गिरे और उनके हाथ पांव कटने लगे अपने आप ही। तो चैतन्य महाप्रभु से सब लोग डर गए। चैतन्य महाप्रभु जो ब्राह्मण कृष्णदास उनका सेवक था ब्रह्मचारी, उसके गए और इसका शिखा पकड़ा, चोटी, इसलिए तो चोटी रखते हैं। आप भगवान की सेवा को भूलोगे तो भक्त आपकी चोटी को खींच के ले आएंगे, आ जाओ भगवान की सेवा करो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गए, उनकी चोटी पकड़ी और खींच के ले आए। महाप्रभु ने कहा, भट्टा थारी आए थे यहारे आनिलो उद्धारिया, इसको मैंने उद्धार करके लाया हूं, हाँ उन भट्टाधारियों के कैंप से उठा के ले आया हूं वापस, हाँ क्योंकि इसने मेरा संग छोड़ दिया था और उनकी संगति में चला गया था। एवे आमे यहाँ आने कराई लो विदाय, जहा इच्छा जा आमा सने नाही आरदाय। अभी महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, मेरी सेवा को छोड़कर भगवान की सेवा को छोड़ के गया है, अभी मेरा कर्तव्य था जब तक ये मेरे साथ गया है ट्रैवलिंग में, यात्रा में, टूर में, मेरा ड्यूटी है कि उसको वापस जहां से ले गए वहां से वहां लाकर छोड़ना। तो महाप्रभु ने पूरे साउथ इंडिया 2 साल यात्रा की, वहां से उनको वापस ले आए और इन्होंने कहा अभी ये यहां मैं लाया हो और आपकी आप सबके हाथों में इसको छोड़ रहा हो, आप ये जो चाहे वो कर सकता है, अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी सेवा में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से बहुत क्रोधित हो गए थे उनके ऊपर। तो भगवान चैतन्य तो बहुत करुणामय है, लेकिन इससे हम सबको सिखाना चाहते हैं, यदि हम भगवान की सेवा में यदि सावधान नहीं होते तो भगवान की ये जो दुर्लंग माया शक्ति है वो किसी को भी पतभ्रष्ट कर सकती है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। मेरे ये जो भौतिक माया है वो बहुत आकृष्ट है, और माया का मतलब ये है जो चीज आपको आपको भगवान का विस्मरण कराती है वो चीज आपके लिए माया है। चाहे आपका मोबाइल हो सकता है, चाहे आपका परिवार हो सकता है, चाहे आपका आपका खुद का सौंदर्य हो सकता है, खुद का नॉलेज हो सकता है, आपका धन हो सकता है, कोई भी आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब हो सकते हैं, चाहे वो स्त्री क्यों ना हो सकती। शास्त्र कहते हैं माया का मूर्तिमान रूप पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए माया का मूर्तिमान रूप कौन है, पुरुष है, क्योंकि जिनके संपर्क से व्यक्ति तुरंत भगवान सेवा आदि को भूलता है। यदि दोनों अनुकूल है, दोनों भगवत सेवा में तत्पर है, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। वैदिक मैरिज क्या है, वैदिक मैरिज यही है कि एक स्त्री और एक पुरुष एक रथ का पहिया है, दोनों पहिया है और वो रथ कहाँ जाना चाहिए, भगवान की ओर भागना चाहिए। अभी ये रथ भगवान की ओर नहीं भागता, भगवान से उल्टा भागता है ना, तो ये दोनों पहिये ठीक होने चाहिए तो बैलेंस वे से भगवान की ओर भागेगा, अदरवाइज बहुत स्ट्रगल है भौतिक जीवन में। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि व्यक्ति भगवान की संगति को छोड़कर भौतिक संगति में गिरता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन दुखमय होगा। तो आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एतश्रुणि कृष्णदास कांदिते लागिला मध्यान्ह करिते महाप्रभु चली गेला। अभी देखो जिसके बिल्कुल नजदीक थे उन्होंने त्याग दिया, कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु ने त्यागा तो कृष्णदास ये सुनकर ही रो पड़े। उन्होंने कहा क्या मेरे जीवन का लाभ, इतना अच्छा जीवन होकर भी महाप्रभु स्वयं मुझे त्याग रहे चैतन्य महाप्रभु, तो ये सुनकर ही रोने लगे। और चैतन्य महाप्रभु को कोई दुख नहीं हुआ था, वो तुरंत मध्यान्ह समंदर में स्नान करने के लिए निकल पड़े अपने भक्तों के संग में। तो शास्त्र कहते हैं कि जो वैष्णव है, जो भक्त है, उनके दो प्रकार का स्वभाव होता है। एक तो वो कमल के जो फूल है, जो पेटल है, पंखुड़ी उसके समान बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे गुलाब का होता है ना पंखुड़ी, वो बहुत कितना कोमल होता है, वैसे वैष्णव या भक्तों का हृदय वैसे होता है, और आवश्यकता होती है तो उनका हृदय वज्र के समान कठोर होता है, इस प्रकार से उनको कोई जान नहीं सकता। तो महाप्रभु उसी चीज को एक प्रकार से दिखा रहे हैं। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर चारि जने युक्ति तब करिला अंतर। तो ये यहाँ शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान ने त्यागा किसी व्यक्ति को, तो लेकिन भगवान से भी ज्यादा उनके भक्त बहुत दयालु हैं, भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त बहुत करुणामय हैं, बहुत कंपैशनेट हैं, उनके अंदर दया के सागर है, करुणा भरी हुई है। तो ये नित्यानंद प्रभु दामोदर और जो जगदानंद है, मुकुंद है, उन्होंने देखा कि ये भक्त को महाप्रभु ने त्यागा, तो ये लोग आपस में चर्चा करने लगे। इन लोगों ने क्या किया कि सोचा कि ये भक्तों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा में लगा है, इसलिए उनको सेवा में उन्होंने रखा। फिर से गौड़ देशे पाठाए ते चाहे एक जान आई के कहे बे जाए प्रभु रागमान। तो इन चार भक्तों ने सोचा अभी हमें, क्योंकि ये लोग ओडिशा बंगाल में थे, जगन्नाथपुरी में, तो इनको मायापुर या जो वेस्ट बंगाल है वहां मैसेज भेजना था कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए हैं, और वो मैसेज किसको देना था, सची माता, अद्वैत आचार्य, ये जो बंगाल मायापुर के जो भक्त थे नवद्वीप के, उनको देना था। तो इन्होंने सोचा कि हमें एक भक्त की आवश्यकता है जो ये सूचना लेकर जाए बंगाल और जगन्नाथपुरी का प्रसाद आदि लेकर जाए। तो उन्होंने क्या किया, अद्वैत श्रीवास आदि जत भक्तगण सवैयासी प्रभु रागमान। तो ये सोचने लगे कि अद्वैत आचार्य नित्यानंद, अद्वैत आचार्य और जो श्रीवास ठाकुर आदि जो भक्त है नवद्वीप में, मायापुर में, उन सबको चैतन्य महाप्रभु को मिलने आना चाहिए जगन्नाथपुरी में। इसलिए उस समय तो कोई फोन नहीं थे, 500 साल पहले की चर्चा हम पढ़ रहे हैं। उस समय तो ये नहीं कि अरे फोन करता हूँ जगन्नाथपुरी से, मेल भेजता हूँ, SMS करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने टूर से वापस आ गए, आप लोग उनको मिलने आ जाओ, नहीं। वहां तो भक्तों को लिटरली भेजना पड़ता है, और वो भी 400-500 किलोमीटर पैदल जाएगा, फिर मैसेज बताया कि महाप्रभु आ गए हैं, तब तो पता नहीं चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले भी जा सकते है, नहीं जब मैसेज देने वाला गया फिर वापस आने तक। तो इस प्रकार से यही कृष्ण दास देव गवड़े पाठाइया एत कहे तारे राखी लेना आश्वासिया। तो फिर उन्होंने सोचा ये जो जाने की सेवा है ये जो कृष्णदास कर सकता है, इनको गौड़ देश, बंगाल को गौड़ देश कहते हैं, गौड़ देश में भेजते हैं, तो इसलिए उनको रखा। मतलब भगवान से भी ज्यादा दयालु भक्त है, भगवान ने कहा मेरी सेवा से हट जाओ, भक्तों ने कहा नहीं सेवा में रखते हैं आपको। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान को अप्रोच करना है तो उनके भक्तों के माध्यम से अप्रोच करना चाहिए। इसलिए तो भगवान के हम भक्तों के दास है तो फिर हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती। इसलिए शास्त्र कहते हैं हरे यदि तुष्ट हो जा, आपके ऊपर क्रोधित हो जाते, रुष्ट हो जाते हैं, तो जो आध्यात्मिक गुरु है या वैष्णव है वो आपको बचाएंगे, लेकिन जो भक्त यदि रुष्ट हो जाए आपके आचरण आपके कार्यकलापों से, तो फिर भगवान भी बचा नहीं सकते। जैसे अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का वर्णन आता है ना, तो जो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया, तो अम्बरीश दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान ने चक्र छोड़ा, और वो चक्र उनके पीछे भाग रहा है, दुर्वासा मुनि परेशान है, वो विष्णु के पास गए, शिव जी के पास गए, सबने कहा नहीं हो सकता, आपको बचा नहीं सकते हम, हाँ, क्योंकि आपने भक्त के प्रति एक प्रकार का अपराध किया है। तो भगवान भी उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है, लेकिन यदि भगवान भी क्रोधित हो जाए, रुष्ट हो जाए, लेकिन हम भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं, तो भक्त हमेशा अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। आरदि ने प्रभु स्थाने कैल निवेदन आज्ञा देह गौड़ देशे पाठाई एक जान। तो इन चारों ने मिलके चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने कहा आप यदि आज्ञा देते हैं तो हम ना एक भक्त को बंगाल भेजना चाहते हैं ये मैसेज देने के लिए। तुम्हारा दक्षिण गमन सुनी सची आए अद्वैतादि भक्त सब आचे दुख पाए। तो इन भक्तों ने कहा कि सची माता जो आपकी माता है और अद्वैत आचार्य ये सब व्यक्ति ये सब लोग यदि आपका पुनरागमन कि आप साउथ इंडिया से वापस जगन्नाथपुरी आए हो ये सुनेंगे तो उनका दुख जो है खत्म हो जाएगा, वो बहुत दुखी है कि आप भ्रमण करने चले गए हैं। एक जन जाई कहो शुभ समाचार प्रभु कहे सही कर जय छत मार। तो उन भक्तों ने कृष्णदास का नाम नहीं बताया उनको कि हमने आपके सेवक को भेजने जिसने आपके साथ गए, लेकिन वो भाग गए थे बीच में। उनका नहीं, हम एक भक्त को भेजना चाहते हैं, उससे क्या होगा, अद्वैत आचार्य सच्ची माता आदि बहुत खुश होंगे और वो दुख अपना खत्म हो जाएगा उनका यदि इस न्यूज को सुनेंगे और वो वापस आपको मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आ जाएंगे। तो महाप्रभु को जब पूछा चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने कहा ये शुभ समाचार देने के लिए हम एक भक्त को भेजना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सही कर जी इच्छा तुम्हारा, आपकी जो इच्छा है वही करो। तबे से कृष्ण दासे गौड़े पाठाइला वैष्णव सभा के देते महाप्रसाद दिला। तो फिर इन भक्तों ने उस कृष्ण दास को गौड़ देश बंगाल भेजा, खाली हाथ नहीं भेजा, कैसे भेजा, प्रसाद लेके जाओ भक्तों के लिए, है ना, कितना वो है अफेक्शन है, यही अफेक्शन डिवोटीज के प्रति, ददाते प्रतिग्रहणाति। हाँ, इसलिए छह प्रीति के लक्षण है भक्तों के संग में, क्या है वो, ददाति प्रतिग्रहणाति भुंगते भोजयते चैव षड विधि प्रीति लक्ष्मणम। हाँ, कि आप खिलाओ और उनसे कुछ प्रसाद को ग्रहण करो। हाँ, तो इस प्रकार के छह प्रकार के प्रीति के लक्षण है, आपने हृदय की बात बताओ और उनसे उनके हृदय की बात सुनो। इस प्रकार के जो छह प्रकार के लक्षण है जिनका वर्णन उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने किया है, तो इन भक्तों ने जगन्नाथ का बहुत सारा प्रसाद दिया, तो कृष्णदास को उठा के लेके जाना पड़ रहा था नवद्वीप में। तबे गौड़ देशे आयला काला कृष्णदास नवद्वीपे गेला त्यह सची आई पाश। तो काला कृष्णदास नवद्वीप आए, नवद्वीप कौन सा स्थान है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, नवद्वीप धाम है, यही वृंदावन धाम, वृंदावन धाम को कहा जाता है माधुर्य धाम, यही वृंदावन धाम जब बहुत अधिक दया या करुणामय हो जाता है, क्योंकि वृंदावन आपके साथ बड़ा कठोरता का व्यवहार करता है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में आप गलती करोगे तो आपको बड़ी सजा मिलेगी, उसमें डाउट नहीं है। हाँ, एक नाम लेते तो हजार नाम लेने के समान है, एक गलती करोगे, एक अपराध करोगे तो उसके भी दंड आपको भुगतने पड़ेंगे। तो ये वृंदावन का धाम, जैसे को तैसा, ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में माधुर्य, मधुरता, स्वीटनेस का प्रभाव है, भगवान कृष्ण बहुत स्वीट है, इसलिए उनका धाम है व्रज भूमि, वृंदावन भी बड़ा स्वीट है। तो यही वृंदावन जब कलियुगा में फिर से अपीयर होता है, प्रकट होता है नवद्वीप धाम के रूप में, नवद्वीप। तो ये नवद्वीप धाम किसने इसकी रचना की थी, श्रीमती राधिका ने, श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण के लिए नवद्वीप धामों धाम की रचना की, जिसमें नवद्वीप है, नाइन आइलैंड्स हैं, जिसमें भगवान अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप या अलग अलग लीलाएं करते हैं और बहुत सुंदर है। आज भी आप बंगाल मायापुर नवद्वीप जाते हो, प्रभुपाद ने उसी को अपने वर्ल्ड हेडक्वार्टर चुना है, कितना सुंदर है, दो नदियां मिल रही हैं और दो नदियों के बीच में इतना सुंदर स्थान है ना, ये नवद्वीप मायापुर जहां चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है या जन्म स्थान है। तो वहां इनको भेजा था और ये गए नवद्वीप में और चैतन्य महाप्रभु की जो माता है सची माता को जाकर ये न्यूज उन्होंने दी। महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार दक्षिण है ते आयला प्रभु कहे समाचार। तो सची माता के पास वो पहुंच गए, काला कृष्णदास ने उन्हें नमस्कार किया और महाप्रसाद उनको भेंट के रूप में दिया। हाँ, फिर उन्होंने शुभ समाचार दिया कि चैतन्य महाप्रभु अब दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ रहे हैं। बल्कि देखो, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं सारे जगत के हित के लिए। उनकी एक अकेली मदर थी, कोई और भाई नहीं थे उनके पास वहां, ना उनके पिताजी थे, और अभी अभी उनका विवाह हुआ था लक्ष्मी विष्णु प्रिया के साथ। उन सबको त्याग कर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया अपनी 24 साल की आयु में, किसके लिए, दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं। भक्त सदैव दूसरों के हित के लिए कार्यरत रहता है, दूसरों के हित में ही अपना हित छुपा हुआ है, ये भक्ति का सीक्रेट है। प्रभुपाद ने कहा जितना दूसरों को कृष्ण दोगे उतने ही कृष्ण आपके जीवन में आएंगे, इसलिए तो जोर दिया जाता है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जिसको भी मिलोगे उसको कृष्ण के बारे में वर्णन करो, कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में उनको सिखाओ, तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में कृष्ण सर्वाधिक प्राप्त होंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं केवल दूसरों के हित के लिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए जी रहा है ना, स्वार्थ, स्वार्थ कहते हैं ना, अपने हित के लिए जी रहे हैं, इसलिए तो हम सुखी नहीं है। महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार, दक्षिण है ते आयला प्रभु कहे समाचार। तो महाप्रसाद दिया और उनको ये न्यूज बताए, सुनिया आनंदित हैला सची मातार मान, शिवा सादी आरजत जत भक्तगान। तो ये शुभ समाचार काला कृष्णदास नवदीप गए तो उन्होंने सची माता और श्रीवास ठाकुर आदि को सुनाया और सारे नवदीप के भक्तों को आनंद हुआ। अरे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा से जगन्नाथपुरी वापस आ गए हैं। सुनिया सबार हैला परम उल्लास, अद्वैत आचार्य ग्रहे गेला कृष्णदास। तो ये न्यूज पहले तो नवद्वीप में सची माता के वहां सुनाई उन्होंने और फिर एक काला कृष्णदास कहा गए अद्वैत आचार्य के घर, सब भक्तों के पास गए अलग अलग भक्तों को बताने के लिए। अद्वैत आचार्य के घर गए और आचार्य र प्रसाद दिया करी नमस्कार, सम्यक कहिल महाप्रभु समाचार। फिर उन्होंने चैतन्य या जगन्नाथ का प्रसाद अद्वैत आचार्य को दिया और बहुत सारे भक्तों को दिया और विस्तार पूर्वक चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया, क्योंकि ये स्वयं उनके साथ गए थे। दक्षिण भारत की पूरी टूर में क्या क्या हुआ वो बताया होगा, अपने बारे में भी बताया होगा। कई बार हम अपने बारे में कुछ हम गलती करते तो उसको बोलते नहीं है ना, बाकी सब चीजें बोलते रहते। यह कृष्णदास लाइव टेलीकास्ट एक प्रकार से कर रहा था कि 2 साल मैं भी तो महाप्रभु के साथ था। वैसे देखा जाए कितना बड़ा सौभाग्य है चैतन्य महाप्रभु के संग में यात्रा में जाना हर लीला स्थली में। और महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब चलते थे तो वो कई प्रकार से लोगों को भक्त बनाते थे। एक उनका आश्रय था उनका ब्यूटी, उनका जो सौंदर्य है चैतन्य महाप्रभु का, उनको देखकर हजारों गांव साउथ इंडिया के डिवोटीज बन गए कृष्ण भक्त। और उस गांव का कोई व्यक्ति भक्त है उसको देख के दूसरे गांव वाले भी भक्त बन जाते थे। और महाप्रभु जब चलते थे दक्षिण भारत की यात्रा में तो महाप्रभु सदैव इसका उच्चारण करते थे, कृष्ण 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम या पाही माम, एक विशेष 4-5 लाइन का ये जो नाम है भगवान का इसको गाते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए नाचते हुए वो यात्रा कर रहे थे। अभी हमें कहा ट्रैवल करना है तो हम पहले टिकट बुक कर लेते हैं फिर यात्रा शुरू करते हैं, वह ऑन द स्पॉट वॉकिंग था चैतन्य महाप्रभु। पूरा देखो जगन्नाथपुरी से चलते गए पूरा कन्याकुमारी तक, रामेश्वरम केरला त्रिवेंद्रम और पूरा ऊपर आए गोवा से होते हुए मुंबई आए और मुंबई से फिर कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु और फिर वापस आ गए विशाखापट्टनम आदि से जगन्नाथपुरी चलते हुए, इतना लंबा यात्रा अलग अलग भगवान के लीला स्थलियों को देखने के लिए। तो इन्होंने अद्वैत आचार्य को सारा विस्तार से समाचार सुनाया कि कहाँ कहाँ हम गए थे। सुनियाचार्य गोसाईर आनंद हाइला, प्रेमावेश हुंकार बहु नृत्य गीत कैला। यह है, हमें आनंदित होना चाहिए। दूसरे भक्त यदि यात्रा में जाते तो हमें क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है जगत में? पर दुखी सुखी, दूसरा दुखी है ना तो मुझे सुख, मैं आनंदित होता हूं। अरे वो व्यक्ति सुखी क्यों है इतना, मैं दुखी हो जाता हूं। ये भौतिक एटीट्यूड है। यहां अद्वैत आचार्य नाचने लगे, अरे चैतन्य महाप्रभु आप भी गए थे यात्रा में, ये सुन के वो नाचने लगे, आनंद होने लगा। भक्तों के आनंद में ही अपना आनंद है। जब हम अपने आनंद की चिंता करते हैं ना फिर हम आनंदित नहीं हो सकते कभी दूसरों के आनंद। इसलिए तो कुंती ने कहा, कुंती महारानी ने कहा, वो व्यक्ति कृष्ण की कृपा को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति दूसरों को कृष्ण कथा कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन करते हुए देखकर जो आनंदित होता है कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं। कुंती महारानी अपने प्रार्थना में कहती है कि वो व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। लेकिन हमें आनंद नहीं होता, हमें क्या होता है? दुख होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है। हाँ, तो इसलिए अद्वैत आचार्य बड़े खुश हो गए। इतना नहीं कि हंसे नहीं, वो नाचने लगे, हुंकार करने लगे, गर्जना करने लगे, कीर्तन करने लगे, हरिदास ठाकुर रहैला परम आनंद, वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद। कितने भक्तों को आनंद हुआ है, हरिदास ठाकुर, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, शिवानंद सेन, आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश्वर, आचार्य निधि आर पंडित गदाधर। तो अद्वैत आचार्य के अलावा आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि, गदाधर पंडित, सारे लोग प्रसन्न हो गए ये सब चीज को सुनकर। श्री राम पंडित आर पंडित दामोदर, श्रीमान पंडित आर विजय श्रीधर। तो सारे पंडित थे, महाप्रभु के भक्त कैसे स्कॉलर है, है ना। हम सोचते नहीं, भक्ति का मतलब जनरली भक्त सोचते हैं अरे ज्ञानी नहीं बनना है। कम से कम आपको ज्ञानी का मतलब है मायावादियों का ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा कृष्ण की सेवा को ढका जाए, जिस ज्ञान के द्वारा भगवत भक्ति कर नहीं पाते। तो ऐसा ज्ञान ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा आप कृष्ण के क्लोज जाते वो ज्ञान नहीं है, भक्ति युक्त वो ज्ञान है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और इधर तो सारे पंडित ही पंडित है। कितने सारे पंडितों का नाम हमने पढ़ा, राम पंडित, वक्रेश्वर पंडित, श्रीमान पंडित। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ग्रंथों को पढ़ना, स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना, शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ना, समझना, जिसके द्वारा हमारी जो बुद्धि है बलशाली होती है और भगवान को हम सरलता से समझ जाते हैं और इस जगत को भी सही रूप से हम देख पाते हैं। इसलिए तो गीता में कृष्ण कहते हैं विमुड़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख व्यक्ति इस जगत को नहीं देख सकता, इस जगत के कार्यकलापों को देखकर वो भ्रमित हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, वास्तव में देखता है। कैसे? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस जगत को हमें देखना चाहिए और उसी लिए हमें ये चक्षु, आध्यात्मिक चक्षु, ज्ञान के चक्षु शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि कई बार लोगों को लगता है कि ये लोग तो हरे कृष्णा वाले नाचते और गाते हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है दूसरा, है ना। प्रभुपाद ने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए, लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि ये तो बस नाचने और गाने वाले लोग हैं। एक बार प्रभुपाद जुहू में थे, मुंबई में उन्होंने नया मंदिर बनाया था और अमेरिकन शिष्य आते थे ना उस समय, बहुत सारे अमेरिकन थे इंडिया में प्रभुपाद के साथ। तो वो लोग रोज जुहू में अलग, मुंबई में अलग अलग जगह दिन में मृदंग करता लेके रोड में नाचते थे गाते थे। तो वहां के लोग क्या करने लगे, पैसे जो खुले पैसे होते ना फेंकने लगे, होते ना कोई जैसे कोई खेल करते हैं लोग, मदारी वगैरह होते हैं, वो लोग ही ऐसे ही लोग हैं, वो भी फेंकने लगे पैसे वगैरह। प्रभुपाद ने कहा स्टॉप दिस संकीर्तन। जो संकीर्तन यज्ञ की जिसने शुरुआत की प्रभुपाद ने, वही कह रहे कि संकीर्तन बंद करो, क्योंकि लोग हमें क्या ले रहे हैं, चीपली ले रहे हैं। तो बहुत चीपली भी नहीं होना चाहिए भक्तों को भी अपने को प्रस्तुत करने में। तो प्रभुपाद ने कहा ये कीर्तन हरिनाम को रुकाओ, फिर हरिनाम को उन्होंने शुरू नहीं करवाया वहां। हाँ, तो इस प्रकार से लोगों को ये गलत ये भी नहीं जाना चाहिए कि ये जो हरे कृष्ण वाले हैं इनको नाचने और गाने के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं है। प्रभुपाद ने कहा जहां आवश्यकता है वह हमें शास्त्रों के दिव्य रहस्यों को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना चाहिए। महाप्रभु नाचते थे, गाते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन जब सारंग भट्टाचार्य जैसे स्कॉलर मिले तो उनको परिवर्तित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य ज्ञान को दिखाया। प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, प्रोफेसर सबके साथ उन्होंने वार्तालाप किए। हाँ, तो ये इस प्रकार का जो अध्ययन है शास्त्रों का वो भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। जनरली जो लोग है होते हैं वो सोचते कि ये जो भक्ति है वो अनपढ़ गवार लोगों के लिए है, निरक्षर लोगों के लिए है, पंडित लोगों के लिए नहीं है। तो ये गलत भावना है। इसलिए भक्तों को इन शास्त्रों को पीना चाहिए और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो महाप्रभु के बहुत सारे भक्तों का नाम यहाँ कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं। राघव पंडित आर आचार्य नंदन, कतेक कहिब आर जत प्रभु रगन। तो कहते कि मैं कितने भक्तों के नामों का वर्णन करूं, राघव पंडित आदि इतने सारे भक्त हैं। सुनिया सवार हैला परम उल्लास, सबे मेली गेला श्री आद्वे तेरा पास। तो इन सब भक्तों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आए हैं, तो सारे आनंदित होकर अद्वैत आचार्य के पास गए। अद्वैत आचार्य सबसे वृद्ध हैं और सबसे सीनियर हैं, वहां नवदीप में उनके पास गए मिलके आचार्य रसबे कैला चरण वंदन, आचार्य गोसाई सवारे कैला अलिंगन। वो सारे भक्तों ने अद्वैत आचार्य के पास गए, उनके चरणों में नमस्कार किया और अद्वैत आचार्य का आलिंगन, अद्वैत आचार्य ने उन सबका आलिंगन किया। दिन दुई तीन आचार्य महोत्सव कैला, नीलाचल जायते आचार्य युक्ति दृढ़ कैला। अभी जब भक्त उनके घर आए तो उन्होंने क्या किया, फेस्टिवल मनाया। वास्तव में डिवोटीज घर में आना वो क्या है, लाइफ में उत्सव है, फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में एक संत थे तुकाराम, वो लिखते अपने सॉन्ग में, वो कहते साधु संत यति घरा तुच्छ दिवाली दशहरा। मतलब साधु संत आपके घर में आते हैं वही दिवाली और वही दशहरा है, वही फेस्टिवल है। अदरवाइज घर में क्या उत्सव है। व्यक्ति के पूरे जीवन में दो तीन उत्सव आते, या तो खुद की शादी या बच्चों की शादी या किसी का बर्थडे, नहीं इसके अलावा फेस्टिवल है क्या लाइफ में, नहीं है। या दिवाली वगैरह आ गई तो परचेजिंग में समय चला जाता है, नहीं है फेस्टिवल लाइफ में। लेकिन जब भगवान का संबंध आता है फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। कभी आविर्भाव तिरुभाव जन्माष्टमी आ रही है, राधाष्टमी आ रही है, वो इधर की यात्रा है, वहां की यात्रा है, मैराथन है, कितने फेस्टिवल है लाइफ में, टाइम नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहते वैकुंठ का एक लक्षण है क्या, अखंडित उत्सव। वैकुंठ का दूसरा नाम है अखंडित उत्सव, मतलब जहां उत्सव कभी खंडित नहीं होते, फेस्टिवल कभी बंद नहीं होते, हमेशा कंटिन्यूअसली फेस्टिवल का एनवायरमेंट होता है, तो उसको वैकुंठ कहा जाता है। और ये जगत क्या है, कुंठामय जगत, फेस्टिवल होता ही नहीं। ये तो लोग फेस्टिवल के नाम पर अपनी जो चीजें वो बेचने में लगे रहते ना, जैसे सेल लगा देते हैं
दिल्ली हाट,
दिल्ली हाट, ये फेस्टिवल प्रगति मैदान में फ्रेंड नाम ना, ये तो बिजनेस है, तो फेस्टिवल नहीं है, आनंद नहीं है, जॉय नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से भक्त जब आए अद्वैत आचार्य के घर में तो उन्होंने महोत्सव किया, कितने तीन चार दिन का। और भक्त जब आते तो क्या महोत्सव क्या होगा, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, भगवान का गुणगान और कृष्ण प्रसाद, बस ये आनंददायी फेस्टिवल है। तो फिर ये सब उत्सव उन्होंने मनाया और फिर उन्होंने दृढ़ किया कि हम सब मिलकर जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाएंगे, हम सब जगन्नाथपुरी जाएंगे, दृढ़ संकल्प किया। सबे मेली नवद्वीपे एकत्र हैया, नीलाद्री चलील शचि माता राज्ञा लया। तो अभी सारे नवद्वीप के भक्त एकत्रित हो गए और उन्होंने परमिशन लेने गए किसके पास, सची माता उनके पास गए, उनका आशीर्वाद या उनकी आज्ञा ली कि हम कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी। और वास्तव में एक कल्चर है, जब आप कहाँ जाते हो तो आपको भगवान का परमिशन लेके जाना चाहिए, डिवोटीज का परमिशन लेके जाना चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, उनके ऊपर थोड़ी कोई सीनियर है कि मुझे क्या आवश्यकता है किसकी परमिशन लेने की, नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से आचरण होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के पास गए, जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना की कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जगन्नाथ दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु उन सब भक्तों के पास आए, उनको भी कहा आप मुझे परमिशन दो, आशीर्वाद दो कि मैं बहुत बड़ी यात्रा में जा रहा हूँ, जगन्नाथ साउथ इंडिया ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ। फिर वो सार्वम भट्टाचार्य के पास गए, उनको कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो, आप बड़े सीनियर हो, मैं जाना चाहता हूँ। सार्वम भट्टाचार्य ने कहा नहीं, जरा दो तीन दिन रुको। मतलब तो बिल्कुल तैयार थे, बैग पैक किया था उन्होंने, सब बैग क्या पैक करना है, उनके पास तो कमंडल ही था और कुछ है नहीं। लेकिन जब सार्वम भट्टाचार्य ने कहा, क्योंकि सार्वम भट्टाचार्य को उनका विरह सहा नहीं जा रहा था, अरे चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखूंगा तो कैसे दिन काटूंगा, आपने कैसे दिन जाएंगे, कैसे बीतेंगे, तो वो बिल्कुल तैयार थे, निकलने वाले थे। तो सार्वम भट्टाचार्य ने कहा ना दो तीन दिन रुक जाइए, तो अपने सारे प्लान्स को छोड़कर वो रुक गए, किसकी प्रसन्नता के लिए, भक्त की। एक भी भक्त को नाराज करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं यात्रा करूंगा तो कृष्ण की कृपा मुझे मिलेगी नहीं और कृष्ण भक्ति में मैं उन्नति नहीं करूंगा। क्योंकि जनरली हम ट्रैवल करते तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी यात्रा के लिए, अपने आनंद के लिए। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से ये सिखाते हैं कि एक भक्त भी हमसे एक प्रकार से नाराज है तो हमें उस यात्रा का उचित लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये सारे भक्त सच्ची माता के पास जाते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका परमिशन लेते हैं और फिर निकलते कहां? जगन्नाथपुरी की यात्रा। तभी यात्रा सफल हो सकती है। प्रभुर समाचार सुनी कुलीन ग्रामवासी, सत्य राज रामानंद मिलीला सबे आसी। तो और भी नवदीप के पास कई सारे टाउन्स थे, उन वहां के भक्तों को भी पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए हैं। वो सारे डिवोटीज फिर निकल पड़े वहां जाने के लिए, अद्वैत आचार्य के साथ निकल गए, कुलीन ग्राम के जो सत्यराज रामानंद आदि भक्त थे। मुकुंद नर हरि रघु नंदन खंड है ते, आचार्य रठाई अयला नीला चल जाए थे। उतना ही नहीं, दूसरा एक गांव था जिसका नाम था खंड, श्रीखंड। श्रीखंड गांव के जो भक्त है, मुकुंद नरहरि रघुनंदन आदि, ये सब अपने स्थान को छोड़कर जगन्नाथपुरी जाने के लिए अद्वैत आचार्य के पास आए। इसे पता चलता है कि ग्रुप में जाना चाहिए, नहीं अकेला अलोन ट्रैवल उचित नहीं है। जाना कैसे चाहे? ग्रुप के साथ जाओ, ग्रुप के साथ भक्तों का संग आपको मिलेगा, कृष्ण प्रसाद मिलेगा, कृष्ण कीर्तन होगा, कृष्ण कथा होगी, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान होगा। हाँ, तो इस प्रकार से ये वातावरण, ये आइडियल यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। ग्रुप ग्रुप ऐसे नहीं कि आजकल ही हम ग्रुप में जा रहे हैं, पहले सब लोग ग्रुप यात्रा में ही जाते थे। से काले दक्षिण है ते परमानंदपुरी, गंगा तीरे तीरे आयला नदी या नगरी। तो उसी समय उसके आसपास जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, नहीं माधवेंद्रपुरी के जो गुरु भाई है, शिष्य है परमानंदपुरी, ईश्वरपुरी के जो गॉड ब्रदर है, वो दक्षिण भारत से यात्रा करते हुए गंगा नदी के किनारे घूमते घूमते कहाँ आ गए? नवद्वीप में आ गए। आयरा मंदिर सुखे करीला विश्राम, आये तारे भिक्षा दिला करी या सम्मान। और वो सच्ची माता या चैतन्य महाप्रभु के घर में आए और सच्ची माता ने उनको रहने के लिए स्थान दिया, क्योंकि वो सन्यासी थे परमानंदपुरी, वो पूरे भारत का भ्रमण करते थे। तो सच्ची माता ने उनको अपने घर में स्थान दिया, उनको प्रसाद भोजन आदि दिया और बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत सम्मान आदि किया। प्रभु रागमन त्यह ताहा ही सुनिला, शीघ्र नीला चला जाए ते तार इच्छा है ल। तो ये परमानंदपुरी इन्होंने, इनको भी पता चला कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ गए हैं जगन्नाथपुरी में, तो इन्होंने भी निश्चय किया कि मुझे जल्द ही जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा में परमानंदपुरी को भी मिले थे दक्षिण भारत की यात्रा में, और उनको भी इन्वाइट किया था कि आप आइए, मैं आपके संग में निवास करना चाहता हूँ, आपके संग में अपने जो दिन है वो बिताना चाहता हूँ। प्रभुर एक भक्त द्विज कमला कांत नाम, तारे लैया नीला चले करेला प्रयान। तो वो अकेले नहीं गए जगन्नाथपुरी, उन्होंने नवदीप में एक भक्त थे जिनका नाम था द्विज कमलाकांत, उनको अपने साथ लिया और जगन्नाथपुरी के लिए उन्होंने अपना ट्रैवलिंग शुरू किया। सत्वरे आसिया ते मिलीला प्रभुरे, प्रभुर आनंद है ल पाई आता हरे। और तुरंत ही परमानंदपुरी बंगाल से, अभी तो ट्रेन को पूरे ओवरनाइट लगती है, 12 घंटे लगते हैं, ये जल्दी पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु वहां उनका इंतजार कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु परमानंदपुरी को देखकर बहुत गदगद हो गए, आनंदित हो गए। और फिर क्या किया? प्रेमावेश कैल तार चरण वंदन, तेह प्रेमावेश कैल प्रभु रालिंगन। तो चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि गुरु के गुरु भाई थे, सीनियर थे, तो उन्होंने उनके चरण पकड़े, उनको प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने, उनके चरणों की पूजा की और परमानंदपुरी को भावावेश में, या परमानंदपुरी ने चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन किया। प्रभु कहे तोमा संगे रहिते वांछाहाय, मोरे कृपा करी करा नीला द्रि आश्राय। तो देखो चैतन्य महाप्रभु कितनी बड़ी डिजायर व्यक्त करते हैं भक्तों को संग, भक्तों के संग में रहने की। हाँ, तो वास्तव में ये जगत में सबसे रहने के लिए उचित स्थान कोई है तो भक्तों के संग में रहना, इससे बढ़कर स्थान नहीं है, या ऐसा निवास स्थान कहीं नहीं। लोग तो अपने घरों में लगाते होंगे ये भवन वो भवन, नहीं कितने नाम लगाते हैं, भवन वो वन ही रहता है, वो भवन, भव मीन्स भगवान और वन मीन्स फॉरेस्ट। तो वहां ना भगवान होते है ना भगवान के भक्त होते हैं, वन ही जंगल में रहने वाले पशु ही होते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करो आप मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं आपके संग में निवास करूं। मोरे कृपा करी कर नीलाद्री आश्रय, और आप क्या करो इसलिए नीलाद्री, आद्री का मतलब है पर्वत, नील पर्वत, इसलिए नीलाद्री उसका नाम है, जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम। तो उन्होंने कहा आप नीलाद्री नीलाचल या जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए। पुरी कहे तो मां संगे रहते वांछा करे, गौड़ है ते चले आयला नीलाचल पुरी। तो देखो इनकी भी भावना क्या थी कि मैं बंगाल को छोड़कर इसलिए जगन्नाथपुरी में आया हूं कि मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं अलग से रहना नहीं चाहता, और इसलिए मैंने बंगाल को जल्दी से छोड़ा और इसलिए मैं आपके पास आ गया हूं। दक्षिण है ते सुनी तुम्हारा आगमन, शची आनंदित आर जत भक्तगान। उन्होंने कहा मैंने देखा नवदीप के भक्तों में प्रेम आपके प्रति, और आपके प्रति आपकी इस न्यूज को जब नवदीप के भक्तों ने सुना कि आप दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए हो, तो सची माता अद्वैत आचार्य और नवदीप के जितने भक्त हैं वो बहुत अधिक आनंदित हुए हैं। सबे आसी ते छे न तुम्हारे देखिते, तासबार विलंब देखी आई लात्वरिते। उन्होंने कहा आपको देखने के लिए वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तो आपको जल्दी देखना चाह रहा था, आपको मैं जल्दी मिलना चाह रहा था, इसलिए मैं उनके उनसे पहले यहाँ जगन्नाथपुरी पहुंचा हूं। काशी मिश्र रावा से निभृते एक घर, प्रभु तारे दिल आर सेवक किंकर। इसको कहते डिवोटी केयर, है ना, भक्त की भक्तों की कैसे केयर करनी चाहिए। कोई गेस्ट आता है अतिथि, हाँ कहते ना अतिथि देवो भव। तो चैतन्य महाप्रभु के पास, बल्कि वो खुद सन्यासी हैं, लेकिन काशी मिश्र ने उनके लिए इतना बड़ा घर दिया था, कई सारे कमरे थे उसमें, उस घर की चर्चा तो हमने की नहीं पिछली बार। ऐसे नहीं कि काशी घर के काशी मिश्र के पास टू बी एच के था, थ्री बी एच के था, नहीं, काशी मिश्र के पास उसमें कम से कम 50-60 कमरों से ज्यादा रूम्स थे। इतना बड़ा आलय, आलय कहते हैं ना उसको, बड़ा घर था जिसमें हॉल्स थे कीर्तन के लिए, कथा के लिए, भगवान के विग्रहों के लिए, बहुत सारे रूम्स थे भक्तों के लिए, इतना बड़ा घर, और वो महाप्रभु को दिया था। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, जितने अधिक भक्त हो उतना ही रहने के लिए आनंददायी है। तो महाप्रभु भक्तों के संग में रहना चाहते थे। आजकल तो लोग जैसे मुर्गी के लिए को बनाते ना छोटा सा पिंजरा, तो ये जो 50 फ्लोर की बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, वो एक कोने में छोटा सा प्लेस होता है, तो सब लोग वैसे तो रह रहे हैं कितना, और उसी में जीवन का लक्ष्य है कि उसी में रहना जाकर ऊपर, कितने साल, 20-30 साल, ये गोल नहीं है भक्तों के संग में रहना। महाप्रभु के पास जब परमानंदपुरी आए तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक रूम परमानंदपुरी को दीजिए, ऐसे नहीं कि रूम देके छोड़ दे, नहीं, आपके साथ सेवक भी होगा, आपके साथ वो आपकी सेवा करेगा, आपकी देखभाल करेगा, आपके लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए वो आप केयर करेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भक्तों का जो उनके पास आते थे उनका ध्यान रखते थे। आरदी ने आयला स्वरूप दामोदर, प्रभुर अत्यंत मर में रसे रसागर। अभी जो जो भक्त आ रहे हैं, अभी एक्चुअली ये वर्णन इस प्रकार से है कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु सागर है, और सागर को सारी दिशाओं से नदियां आकर मिल रही है। तो एक एक भक्त की तुलना अलग अलग नदियों से करते हैं। अभी कोई भक्त बंगाल से आ गए, कोई भक्त अभी स्वरूप दामोदर आ रहे, फिर गोविंद आएंगे, काशीश्वर आएंगे, मतलब महाप्रभु सेंटर है चैतन्य महाप्रभु सारे कार्यकलापों का। वो जगन्नाथपुरी में आए तो सारे नदियां आकर उनको मिलती हैं, और फिर वो सागर ऐसे बाहर निकलने लगता है, सुनामी आ जाती है, और सुनामी में जो भी अटक जाते हैं वो कृष्ण भक्त बन जाता है। हाँ, उसके प्रभाव से सारे नवदीप, सारे बंगाल, ओडिशा के सारे लोग कृष्ण के महान भक्त बन गए। तो एक दिन स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के ही संग में थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी नहीं, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही जो नवदीप में थे वो भी उनको मिलने के लिए आ गए, उनके साथ रहने के लिए। जो अत्यंत मर्मी, मर्मी का मतलब है बहुत प्रगाढ़ मित्र थे, अत्यंत मर्मी रसे रसागर,
स्वरूप दामोदर आय से भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत घनिष्ठ, मतलब चैतन्य महाप्रभु के अंदर बाहर की हर चीज उनको पता थी, और इतना ही नहीं बल्कि खुद ही भगवत भक्ति से बहुत भरे हुए थे। इसलिए रसे रस सागर, रस के सागर किसी और भक्त के लिए कृष्णदास कविराज ने बोला नहीं, उन्होंने स्वरूप दामोदर कहा कि ये भक्त जो है ना भगवत भक्ति के रस से भरा हुआ है, हाँ इसके सारे कार्यकलापों से भक्ति रस ऐसे टपकने लगता है, इतना प्रेम भगवान के लिए है, चैतन्य महाप्रभु के लिए है। तो वास्तव में ये जो स्वरूप नाम है ये ब्रह्मचारी के नाम होते हैं, शंकराचार्य जो संप्रदाय है जिनमें 10 ब्रह्मचारी के अलग अलग नाम होते हैं, तो उसमें स्वरूप भी एक नाम है, हाँ जो उनकी एक उपाधि है या पदवी है। पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्वाश्रमे नवद्वीपे चिलाते प्रभु रचरणे। ये स्वरूप दामोदर का पहले नाम क्या था? पुरुषोत्तम आचार्य, पूर्व आश्रम है। अभी ये संन्यास लेने के लिए वो चले गए थे, वाराणसी चले गए थे, मतलब क्योंकि महाप्रभु और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, शायद फ्रेंड थे, और फिर जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया है, उन्होंने सोचा मैं क्या कर रहा हूं फिर घर में बैठ के, ये भी निकल पड़े उनके बाद। चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में जाके संन्यास लिया, इन्होंने सोचा मुझे भी संन्यास लेना चाहिए, जैसे इस जगत में भी व्यक्ति एक दूसरे का देख के नकल करता है, इसने इसका बेटा इंजीनियरिंग करने गया है, मैं भी अपने बेटे को भेजता हूँ। तो यहाँ इसने सोचा मेरा मित्र ने संन्यास लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी संन्यास लेता हूँ। तो ये संन्यास तो इन्होंने बंगाल में लिया, लेकिन ये स्वरूप दामोदर महाप्रभु के संन्यास के बाद बनारस गए, और वहां संन्यास उन्होंने ग्रहण किया, और उनको स्वरूप की पदवी मिली, नाम आदि मिला, लेकिन उन्होंने कोई संन्यास के चिन्ह अपने शरीर में धारण नहीं किए, वो ब्रह्मचारी बने रहे। जैसे संन्यास कोई ग्रहण करता है तो उसका कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, डंडा आ जाता है, सब आ जाता है, तो वो सब चीजें नहीं, उन्होंने ब्रह्मचारी जो वेश था वही रखा। जैसे इस्कॉन में भी एक सन्यासी है, हाँ जो चेन्नई में रहते हैं, भानुस्वामी, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, टी शर्ट पहन के रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये इतने बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे किसी और ने नहीं लिख सकते, हाँ तो उन्होंने बिल्कुल वो सिंपल सा टी शर्ट पहन के रहते हैं, छोटा सा एक छोटा सा धोती, और बहुत पावरफुल, इतने स्कॉलरली वैष्णव है, इस्कॉन के गुरु है या सन्यासी महाराज है। पुरुषोत्तम आचार्य, ये उनका पहले आश्रम का नाम था। प्रभुर संन्यास देखी उन्मत्त हैया, संन्यास ग्रहण कैल वाराणसी गया। तो अगले श्लोक में है कि महाप्रभु का संन्यास देखकर ये भी वाराणसी चले गए थे। चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिले न तारे, वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोके रे। तो उनके गुरु कौन थे? चैतन्यानंद ये आनंद, ये मायावादी जो है अपना जो नाम होता है ना संन्यास आदि का, उसमें आनंद जरूर लगाते है, नाम आनंद होने से आनंदी थोड़ी रहता है व्यक्ति, नहीं रहता, अमर होने से अमर थोड़ी रहता है, वो मरता ही है, या किसी का नाम लक्ष्मीपति है तो हमेशा थोड़ी लक्ष्मी की कृपा होगी उसके ऊपर, ऐसे तो नहीं है। हाँ तो चैतन्यानंद उनके गुरु का नाम था, उन्होंने कहा तुम क्या करो, चैतन्यानंद भारती थे, उन्होंने कहा कि आप वेदांत पढ़ो, वेदांत सूत्रों को और दूसरों को भी पढ़ाते रहो, इसकी शिक्षा दो। परम विरक्त तेह परम पंडित, कायमने आश्रिया चे श्री कृष्ण चरित। तो ये स्वरूप दामोदर का गुण क्या था? परम विरक्त, उनके जैसा विरक्त कोई नहीं था, और परम पंडित, दोनों गुणों से भरे हुए थे, इतने बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे, सारे शास्त्रों का घन उन्होंने अध्ययन किया था, और वैराग्य भी था, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या था? काया मने आश्रिया चे श्री कृष्ण चरित। तो भगवान कृष्ण का जो चरित्र आदि है उनमें अपना मन और अपनी जो वाणी है उसको लगाया था, पूर्ण रूपे ने भगवान की उन्होंने शरण ग्रहण किए थे, उनके उनके आश्रय में थे। निचिन्ते कृष्ण भजिव यही त कारणे उन्मादे करिलते ह संन्यास ग्रहणे। तो उन्होंने संन्यास क्यों ग्रहण किया था, बल्कि एक प्रकार से उन्मत्त हो जाता है ना व्यक्ति, अचानक मन में जो आया वो कर लिया, इनका संन्यास लेने का कोई प्लान नहीं था, ऐसे मन में आ गए तो ले लिया, लेकिन उद्देश्य उसके पीछे एक ये भी था कि वो सदैव बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी डिस्टर्बेंस से के कृष्ण की पूजा करना चाहते थे हमेशा अपने लाइफ में। तो इसलिए उन्होंने सोचा अरे संन्यास लूंगा तो मुझे बाकी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या है, भगवान की हमेशा सेवा करता रहूंगा, भगवान की भजन में करता रहूंगा। संन्यास करेला शिका सूत्र त्याग रूप योग पट्ट नानिल नाम हैल स्वरूप। तो इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद जो पुरुषोत्तम आचार्य है, इन्होंने अपनी चोटी काट दी और जनेऊ का भी त्याग किया। इन्होंने गैरव्य वस्त्र को स्वीकारा नहीं, उन्होंने क्या किया, सन्यासी की पदवी भी उन्होंने स्वीकारी नहीं और आजीवन फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। हम लोग सन्यास ग्रहण करने के बाद भी वो कौन सा जीवन जीने लगे, ब्रह्मचारी जीवन, नॉर्मल। सन्यास के पद जो भी नाम है, पद है, जो बाहरी रूप जो है सन्यास आश्रम का, जो उसको उन्होंने स्वीकारा नहीं। गुरु ठाई आज्ञा मागी आयला नीला चले रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद विभले। तो गुरु के पास उन्होंने आज्ञा मांगी और नीलाचल या नव जगन्नाथपुरी आए थे और जगन्नाथपुरी में रात्रि दिन दिन रात भगवान की प्रेममयी सेवा में भगवत भक्ति का रसास्वादन करते थे और उसी के लिए जीवन मिला है। व्यक्ति का जीवन उसी के लिए, एक्चुअली कितना जीवन हमारे पास बचा है, इतना कम समय है, उसी में भी इतने सारे स्ट्रगल हम अपने सर में हमेशा मतलब हथौड़ा लेके मारना चाहते, मतलब आ बैल और मुझे मार, है कि नहीं। भौतिक जीवन क्या है ना, चाहते हुए हम टेंशन को अपने जीवन में लेना चाहते, सरलता से अपना जीवन जीना नहीं चाहते, भगवत भजन नहीं करना चाहते। तो वो गुरु के पास उन्होंने आज्ञा मांगे और उनकी आज्ञा लेकर वो नीलाचल जगन्नाथपुरी आए थे और रात्रि दिन कृष्ण प्रेम के आनंद में पागल रहते थे, विवल हो जाते थे। पांडित्य अवधि वाक्य नाही कारो सने निर्जने रहे लोक सब नाही जाने। बल्कि स्वरूप दामोदर महाप्रभु से मिलने से पहले जगन्नाथपुरी में आए थे, उनके नॉलेज या पांडित्य की पराकाष्ठा पूरे, उसमें कोई इतना पंडित विद्वान नहीं था जगन्नाथपुरी में, और वो किसी से कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते थे, निर्जन स्थान में बैठे रहते थे और कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, और इसी कारण से कोई उनको पहचानता भी नहीं था कि हाँ ये भी एक कोई बड़ा भक्त है। तो इस प्रकार की भावना एक भक्त की होती है, भक्त अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता, भक्त हमेशा भगवान की महिमा को स्थापित करना चाहता है इस संसार में। कृष्ण रस तत्व वेत्ता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। देखो स्वरूप नाम की व्याख्या कृष्णदास कविराज करते हैं कि कृष्ण रस तत्व वेत्ता, कृष्ण भक्ति के जो रस है, हाँ पंच रस या बारह रस है टोटली, उसमें पांच प्रभु के और सात गौण है, तो ऐसे कृष्ण भक्ति के रसों के वो ज्ञाता थे, पूर्णतया उसको जानने वाले थे और साक्षात चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप थे। ग्रंथ श्लोक गीत के प्रभु पाशे आने स्वरूप परीक्षा कैले पाछे प्रभु सुने। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी बने, पर्सनल सेवक। तो कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता था, या किसी व्यक्ति ने अपना बुक लिख दिया या पोयम लिख दी या कुछ गीत की रचना की, तो वो पहले वो चाहता था कि अरे महाप्रभु को दिखाओ, सुने वो मेरी बात। तो उससे पहले हर एक व्यक्ति को अपना बुक या अपनी पोयम या अपना गीत जाकर स्वरूप दामोदर को सुनाना होता था। स्वरूप दामोदर कहे कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ओके है, तो आगे चैतन्य महाप्रभु के पास भेजते थे, तब चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनिते न हय प्रभुर चित्ते रविलास उल्लास। तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी ऐसे ग्रंथों को नहीं सुनना चाहते थे, कभी भी ऐसे गीतों को नहीं सुनना चाहते थे जो भक्ति रस या भक्ति रस के जो सिद्धांत है उसके विरोध में है। जिस ग्रंथों में जिस गीतों में भगवत भक्ति स्थापित नहीं की गई है या भगवत भक्ति के अलावा वर्णन है, तो ऐसे ग्रंथों को महाप्रभु नहीं सुनते थे, ना उसको सुनना चाहते थे, ना उसको पढ़ते थे। तो ये रसाभास है, हाँ, तो इसको चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सुनते नहीं थे। अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण शुद्ध हय यदि प्रभुर करा न श्रवण। तो स्वरूप दामोदर पहले परीक्षण करते थे और फिर जाकर किनको सुनाते थे, अनुमति देकर फिर चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद यही तीन गीते करान प्रभुर आनंद। तो स्वरूप दामोदर तीन भक्तों के गीतों को पढ़ा करते थे रोज, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। वैसे देखा जाए महाप्रभु कितना सुनते रहते थे, ऐसा वर्णन आया नहीं कि महाप्रभु पढ़ते रह गए पूरी रात, नहीं, वर्णन आता है कि रामानंद राय से सुना करते थे, स्वरूप दामोदर से सुना करते थे, गदाधर पंडित से सुना करते थे। हाँ, स्वरूप दामोदर, तो स्वरूप दामोदर तीन वैष्णव ने लिखे हुए जो सॉन्ग्स हैं उसको गाते थे, महाप्रभु सुनते थे। एक थे विद्यापति, एक थे चंडीदास और एक थे जयदेव गोस्वामी। ये जो तीन आचार्य हुए हैं हजारों साल पहले, उन्होंने जो कृष्ण का वर्णन किया है, आज तक कृष्ण का ऐसा वर्णन किसी और ने नहीं किया, विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी ने। जयदेव गोस्वामी ने जो काव्य रचना की है कृष्ण के, राधा कृष्ण और वृंदावन के बारे में, आज तक ऐसा अनमोल ग्रंथ या अनमोल ऐसा रचना किसी और ने प्रस्तुत नहीं किया है। तो महाप्रभु इन्होंने लिखे हुए जो गीत है, ग्रंथ है, उसको पढ़ा करते थे या सुना करते थे। और ये स्वरूप दामोदर गाने में बहुत मधुर थे, स्वरूप दामोदर कीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु उसको सुनकर भावावेश में आ जाते थे। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर समार नाही महामति। देखो कितने गुण है, संगीत में गंधर्वों के समान गाते थे, और जब पंडित की बात आती तो किसके समान थे? बृहस्पति, देवताओं के गुरु, इतने अमेजिंग वैष्णव थे। तो भक्तों में ये सब गुण भरे होने चाहिए। भक्त का मतलब ही है गुणों का सागर, सब प्रकार के गुण भक्त में से। प्रभुपाद ने कहा डिवोटी को ऑलराउंडर होना चाहिए, सब प्रकार के चीजें उसके आनी चाहिए। प्रभुपाद ने कम से कम पांच चीजें आनी चाहिए, उसको ड्राइविंग आना चाहिए, उसको कुकिंग आना चाहिए, उसको कीर्तन आना चाहिए, उसको प्रवचन देना आना चाहिए, और उसको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण की सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, ये पांच चीजें, ये बल्कि इनके अलावा बहुत गुणों में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। और वैसे भी कृष्ण से भक्ति में हम लग जाते हैं तो हमारे अंदर कोई दक्षता नहीं है, किसी विषय की एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करते करते हमारे अंदर सारे गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर का वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं, और उनके बारे में एक श्लोक वर्णन आया है। अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम शिवासादि भक्तगणेर हय प्राणसम। तो ये स्वरूप दामोदर नित्यानंद प्रभु अद्वैत आदि भक्तों के बहुत प्रिय थे। तो ऐसे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को आकर मिलते हैं। फिर अगली बार हम सुनेंगे कि किस प्रकार स्वरूप दामोदर आए, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, और उन्होंने एक विशेष श्लोक को बोला जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु बहुत गदगद हो गए, आनंदित हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर बहुत प्रिय है चैतन्य महाप्रभु के, जो चैतन्य महाप्रभु के दूसरे कलेवर हैं, दूसरे स्वरूप हैं। हाँ, तो उनके चरित्र पर हमें मेडिटेट करना चाहिए, और किस प्रकार से महाप्रभु को प्रिय थे, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, उससे हमें कई शिक्षा लेनी चाहिए। श्री श्री चैतन्य चरितामृत के।